Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार मेरे एक मित्र किसी व्यक्ति का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग मुझसे बखान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो एक बैंक में जाया करते थे, तो बैंक में जो बाहर प्यून बैठा रहा करता था वो बड़ा ही उदास और निराश रहा करता था। तो मेरे मित्र ने पूछा उनसे कि आप क्यों इतने उदास रहते हैं, निराश रहते हैं। तो पहले तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि इस बैंक का जो मैनेजर है वो मेरे ही क्लास में पढ़ा हुआ है। हम दोनों साथ साथ पढ़े हुए हैं, एक ही बेंच पे, एक ही टेबल पे बैठ करके पढ़े हुए हैं। लेकिन आज वो मैनेजर हो गया है और मैं उसी बैंक में प्यून हूँ। मैं बाहर धूप में बैठा रहता हूँ और साथ ही मुझे कोई फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन वो अंदर एसी रूम में बैठा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसे ले जाके मुझे फाइल देना पड़ता है या चाय देना पड़ता है, तो फिर मुझे बहुत ही कष्ट होता है कि काश मैंने भी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता। तो मित्रों, ये पढ़ाई वाली जो बात है ना, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसकी कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि एडमिशन हमने कभी भी ली हो, लेकिन पढ़ाई यदि पूरी लगन से की जाए, जिस पथ पे हमने कदम रख दिया है उस पथ पे यदि पूरी तत्परता से आगे बढ़ा जाए, तो सचमुच उस शिखर पे पहुंचा जा सकता है जिस शिखर पे हम पहुंचना चाहते हैं। आवश्यकता शायद इस बात की है, मुझे लगता है कि हम अपनी पूरी शक्ति झोंक दें, हम अपनी पूरी लगन लगा दें। ऐसा ना हो कि अध कचरे मन से हमने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा नहीं पढ़ा, तो शायद वो प्राप्ति भी अधूरी रह जाती है और बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। ठीक उसी व्यक्ति की तरह जो यदि शायद अपने 20-25 वर्ष की आयु तक अच्छी तरह पढ़ाई पे ध्यान दिया होता, लगन से पढ़ लेता, तो शायद वो भी किसी बैंक में मैनेजर होता या ऐसे पद पे तो होता जहाँ उसे गिल्ट फील नहीं होता। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, चाहे वो बात हमारे लौकिक पढ़ाई की आती है या फिर अलौकिक आध्यात्मिक पढ़ाई की आती है, जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भ्राता जी का अभिनंदन करने के साथ। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, कई बार ऐसे जीवन में प्रसंग देखने और सुनने को मिलते हैं जब अपने प्रारंभिक काल को तो विद्यार्थी या युवा ऐसे निकाल देते हैं, चलो खेलते कूदते हुए, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश हमने भी कुछ कर लिया होता।
हाँ, ये तो प्राय सभी मनुष्यों के साथ होता है और आजकल बहुत सारे युवक जरा और चीज़ों की ओर जो बढ़ जाते हैं और पढ़ाई से पूरा इनकार कर देते हैं, तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है और आगे चल के जीवन में उनके पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी भी ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इस पर भी जो मनुष्य बहुत अच्छा ध्यान देता है उसका पूरा भविष्य सुंदर होता है। और मैं तो ये कहूँगा, एक बार 6 मास मेहनत करके कोई व्यक्ति अगर अपनी मनोस्थिति को बहुत सुंदर बना ले तो उसका पूरा ये जीवन, चाहे आध्यात्मिक साधनाओं के लिए चाहे लौकिक कार्यों के लिए, सरल और सफल हो जाता है।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, चलिए हम लोग लौकिक हम पढ़ाई के बारे में तो बात करते रहते हैं। हमारी कल बात हो रही थी, जैसे हमारे पास मेल आया था कि कैसे ये जो पढ़ाई है उसमें कैसे हम टॉप पे पहुँचें, कैसे अच्छे से अच्छा अध्ययन करें और कैसे हम मतलब कहें कि हर प्रकार की चीज़ें अपने जीवन में ले आएँ, क्या क्या?
देखिए, ये तो पढ़ाई जीवन की पढ़ाई है, ये ऐसी तो नहीं कि इसमें रट रटा के और एग्जाम दे देना है और नंबर ले लेने हैं। ये तो जीवन में रोज एग्जाम होते हैं मनुष्य के, हर पल पे जीवन में परीक्षाएँ आती हैं। उन परीक्षाओं में हमारा ज्ञान कितना सार्थक सिद्ध हुआ है, हमने अपने ज्ञान को कितना अप्लाई किया है। मान लो किसी ने चलते चलते हमारा अपमान ही किया, बहुत अच्छा, हमें कोई अवसर नहीं दिया, हमारी लेग पुलिंग कर ली, हमारी आलोचना करने लगा, उस टाइम हम अपनी मनोस्थिति को कैसे एक रस रखते हैं ज्ञान का प्रयोग करके। ये प्रैक्टिकल पेपर होता है, इसी में हमें मार्क्स मिलते हैं
जी।
इसलिए हमारे यहाँ जो 4 सब्जेक्ट हैं, ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं और फिर ईश्वरीय सेवाएं, इन 4 सब्जेक्ट को ही एक साथ लेकर हमें चलना होता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमें 5 इम्पोर्टेंट धारणाएं अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। उसमें हमने निरहंकारिता, सुभावना, संतुष्टता, बहुत ज़्यादा सरलता, सबको सुख देने की फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग संसार के लिए भी, ये बहुत डीप धारणाएँ हैं। पर इनसे भी डीप धारणाएं तीन मैं जोड़ा करता हूँ उसमें, तो एक तो आ गई सुभावना, दूसरा क्षमा भाव और तीसरी बहुत सुंदर धारणा है साक्षी भाव। ये कुछ गुह्य बातें हैं, इनको समझना भी नए पुरुषार्थियों के लिए इतना संभव नहीं होता है। ज्ञान हमारा दिनों दिन गुह्य तब होता जाएगा जब हम ज्ञान का रोज तो श्रवण करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो रोज सुनते नहीं भाई, हम तो दूर रहते हैं। आजकल साधन बहुत हैं, उनका उपयोग करते हुए ज्ञान श्रवण, ज्ञान की स्टडी, ईश्वरीय महावाक्यों पे मनन चिंतन और ज्ञान की गुह्यता विशेष रूप से तब आएगी जब हम उनको अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, तो हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता चलेगा। ये बहुत बड़ा धन है हमारे लिए, ज्ञान धन, दुनिया में भी इसको सबसे बड़ा धन मानते हैं। इसका ही हम दूसरों को दान भी करते हैं, उसे हम सेवा कहते हैं, ईश्वरीय सेवा, कि हम दूसरों को अच्छा ज्ञान देकर उन्हें परमात्म मिलन का सुख अनुभव करा दें। इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति राह भटक गया हो उसको हम श्रेष्ठ राह दिखा दें, ये बहुत बड़ी सेवा है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराश परेशान सुसाइड करने को तैयार हो उसको हम जीवन दान दे दें, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवाएं, निराश है उसको उमंग उत्साह दिला के आगे बढ़ा दें, ये सेवा संसार में तो कोई कर नहीं रहा। ईश्वरीय मार्ग पे चलने वाले लोग ये सेवा करते हैं। तो ये सेवाओं का फिल धारणाएं, ये हम बहुत अच्छी तरह अपनाएं, यद्यपि एक एक धारणा का बहुत बहुत विस्तार है, लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट है हमारा राजयोग, उसको हम निरंतर बढ़ाते चलें, उसमें अलबेले ना हो तो हम लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। योग भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जो बहुत ही गुह्य है।
बिल्कुल दादा जी, ये चारों जो सब्जेक्ट आपने बताए हैं, प्रतिदिन इन चारों सब्जेक्ट में कैसे बैलेंस रखा जाए? यदि आप सुबह से रात तक की बात कहें और ये चारों सब्जेक्ट हमारे जीवन में आए और बिल्कुल संपूर्ण रूप से आए ऐसा हम चाहते हैं, तो कैसी दिनचर्या?
देखिए, जिस व्यक्ति को अध्यात्म के शिखर पर पहुंचना है, शीर्ष अवस्था को प्राप्त करना है, उससे जैसे मैंने कहा था कि अपने जीवन के कुछ नियम बना लेने चाहिए, और उन नियमों में से एक नियम कि अपनी दिनचर्या को ऐसा मैनेज करें कि सवेरे 4 बजे उठकर परमात्म आनंद लें, स्वयं को बिल्कुल फ्रेश कर दें, उससे हम कुछ वरदान प्राप्त कर लें, गॉडली गिफ्ट हमें मिल जाए, और रोज हमें कुछ समय के लिए ही सही ऐसा अनुभव हो जाए कि हमारा परमात्मा से मिलन हुआ, उससे हमारी बातचीत हुई, ये आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। तो 4 से 8 बजे तक के 4 घंटे बहुत सुंदर समय साधकों के पास होता है
जी।
इन 4 घंटों का सुंदर उपयोग कर लेना, 4 से 5, 4:45 योग कर लिया, उसके बाद भी खाली समय है, उसको अच्छे चिंतन में, अच्छी स्थिति में, अच्छे अभ्यास करते हुए बिताना। 2 घंटे का समय बहुत बड़ा होता है, यानी फिर से स्वयं को चार्ज कर देना। फिर 7 बजे से 6:45 से ईश्वरीय महावाक्य सुने जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपने घर से सेवा केंद्र तक जाता है, पैदल जाता है, उसको उसमें 15 मिनट लगते हैं, मिनिमम समझ लो 15-20 मिनट। तो ये जो उसकी यात्रा है सवेरे की, देखिए घूमना भी हो जाएगा, सुंदर चिंतन में इसको व्यतीत करें। ऐसे नहीं दौड़ भाग के केवल जा रहे हैं, केवल घूमना हो जाए, लेकिन घूमना वॉकिंग भी अगर सुंदर विचारों के साथ हो तो वॉकिंग डबल फायदा देगी, देह को भी एक अच्छी हवा ऑक्सीजन भी मिलेगी, शरीर के अंग भी खुलेंगे और मन को सुंदर विचार मिलेंगे, तो पूरी तरह से जीवन जैसे चार्ज होगा, आनंदित होगा। फिर ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करें बहुत अच्छी मनोस्थिति में बैठकर, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ, या मैं तो लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, ऊपर से शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं और हम यहाँ उसके महावाक्य सुन रहे हैं, इस गुड फीलिंग में स्थित होकर कि मैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान पढ़ाने आया है, वो डायरेक्ट हमसे बातें कर रहा है, रूरिहान कर रहा है, हमें कुछ याद दिला रहा है, उसे हम याद करते चले, वो हमारी सोई हुई चेतना को जगाता है, हम जगते चलें, तो 4 से 8 का ये समय बहुत ही सुंदर होगा। अब किसी को मान लो 9:30 ऑफिस जाना है, एवरेज 9 ऑफिस जाना है, एक घंटा उसके पास है। किसी को थोड़ी अपनी तैयारी करनी होगी, वो 7:30 ही घर पहुंचना चाहेंगे, फिर तैयारी करें। इस तैयारी को भी हम केवल कर्म कॉन्शियस होके न करें, लेकिन कुछ अच्छी स्मृति, जैसे स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो विजय रतन हूँ, एक अच्छी फीलिंग्स के साथ तैयारी करें। मान लो फिर ऑफिस जाना है, किसी को एक घंटा लगता है, किसी को आधा घंटा लगता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास करें। आजकल बहुत सारे साधन हैं, लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनते हुए जाते हैं, अच्छी क्लासेस सुनते हुए जाते हैं, कई लोग तो अनुभव सुनाते हैं कि हमारी एक घंटे की यात्रा होती है, ये एक घंटा हमारे लिए सबसे सुंदर समय होता है, इतने सुंदर बातें हम सुन लेते हैं कि मन आनंदित हो जाता है। और जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो हमें लगता है ये कर्म एक सुंदर खेल है, हम इसे पूरी तरह एंजॉय करेंगे। फिर कर्म क्षेत्र पर बहुत हल्के रहकर कर्म को एंजॉय करते हुए, कुछ छोटे छोटे अभ्यास करते हुए स्वमान के कर्म क्षेत्र पर पूरा कार्य करें जिम्मेदारी से। घर लौटें तो ऐसे लौटें कि ऑफिस का सब कार्य, कोई टेंशन हो गई हो, कोई बात हो गई हो, रास्ते में ही उसको समाप्त कर दें। और अगर कोई अच्छी क्लास हो उसको सुनते हुए आए पुनः, तो उस क्लास के प्रभाव से कोई बुरी बात अगर मन पे छाई है वो समाप्त हो जाएगी। फिर रात को भी अच्छी स्थिति में शिव बाबा से गुड नाइट करके, उसे बातें करते हुए, अपने को पूर्ण तरह उस पर समर्पित करते हुए हम शयन कक्ष में जाएं, तो एक बहुत अच्छी दिनचर्या हम बना लें,
सकते हैं।
बहुत अच्छा
भ्रता जी, ये तो रही, इसमें जैसे आपने चर्चा की है तो एक ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण आया और साथ ही योग का सुंदर अभ्यास आया। धारणाएं कैसे हम लाएं, कैसे उन्हें ध्यान में रखें, और साथ ही सेवाओं वाली जो बात है, जो चौथा सब्जेक्ट है, और कहा जाता है कि मन से भी सेवा करो, वचन से भी सेवा करो, या कर्म से भी सेवा करो, तो ये कैसे संभव और कहाँ डालें, क्योंकि सारे दिन तो हम बिजी हैं, तो फिर कैसे ये सब बैलेंस होगा?
हाँ, कुछ लोग सारा दिन बिजी हैं, कुछ लोग सैटरडे संडे को खाली होते हैं, कुछ लोग संडे को खाली होते हैं, कोई ओकेजनली खाली होते हैं, हमारे यहाँ सेवाएं के प्रोग्राम चलते रहते हैं, कोई तब खाली होते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, 4 घंटे का आज प्रोग्राम है, हम भी अपना योगदान करेंगे, धन से भी योगदान करते हैं, तन भी लगाते हैं, कोई भी कार्य करना है वो भी करते हैं, और मन में शुभ भावनाएं, योगदान कि आज की ये सेवा संपूर्ण सफल हो, ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है, सबको हमें प्रभु संदेश देना है, देवकुल की आत्माओं को हमें जगाना है, तो इन गुड फीलिंग्स में ये मानसिक सहयोग होगा। धन सब मिलके लगाते ही हैं, जितने भी भाई बहने होते हैं, कोई 50 रुपये लगाता है, कोई 100 रुपये लगाता है, कोई 1000 लगाता है, कोई 500 लगाता है, जैसे जिसकी स्थिति, धन की स्थिति और जैसे जिसकी भावना, ये सब भी करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है धारणाओं की। अब धारणाओं में जैसे मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा निरहंकारिता, एक बहुत सुंदर धारणा है।
क्या डेली के लिए एक एक धारणा रखा जाए?
नहीं, डेली तो काम नहीं होगा, एक एक धारणा पे कोई लंबा समय तक हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसमें पहली पहली धारणाएं सबको ले लेनी चाहिए। देखिए, 3 जो मैंने बताई थी, सरलता, निरंकारिता और संतुष्टता, एक साथ लेके चल सकते हैं। 3 मास तक का एक संकल्प कर लें, 3 मास में हमें इन 3 धारणाओं पे बहुत अच्छा काम। संतुष्ट, जो कुछ हमारे पास है, जिस स्थिति में हम संसार में हैं, उसमें पूर्ण संतुष्ट। अब कोई कंपिटिशन नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सांसारिक इच्छाओं से अपने को थोड़ा सा डिटैच करें, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इस चाहना को खत्म करेंगे। संतुष्ट हूँ मैं, अब मुझे भगवान मिल गए, अब मुझे संपूर्ण सत्य मिल गया, जो पाना था वो पा लिया, अब उससे मुझे सब कुछ लेना है, संसार से नहीं। इच्छाएं, अब संसार से क्या लेंगे, किसी को एक सुंदर सा लैपटॉप चाहता है, अच्छा बाइक ले ली तो और अच्छी निकली है, वो चाहिए, कार ले ली तो वो चाहिए, घरों में कपड़े साड़ियां ये वो ले ली, ये सब तो स्थूल चीजें हैं ना, क्षणिक हैं, चलो ये भी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है हमने ले ली। अब हमें शिव बाबा से सब कुछ लेना है, ऐसी आत्मसंतोष की एक सुंदर फीलिंग, यानी इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे जो भागदौड़ है उससे अपने को डिटैच करना,
मतलब जो है उसमें हम खुश रहें, संतुष्ट रहें।
बिल्कुल। और दूसरी जो सुंदर धारणा है निरहंकारिता, ईगोलेसनेस, इसका स्वरूप है मैं और मेरापन। मैं ईगो का बहुत एक प्रत्यक्ष स्वरूप होता है, मेरा, ये सब मेरे, मेरा, ये तेरा, मेरा, ये इसमें मनुष्य बहुत उलझता है। देखिए, आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, तो वो आपके ही, लेकिन उसकी ईगो में आ जाना मेरा, ये मनुष्य को गिरावट की ओर ले चलता है। और खास साधनाओं के मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर, ये चीज मनुष्य को बहुत पीछे ले जाती है। जिसको आगे बढ़ना है, लास्ट आए फास्ट जाना है, उसको मैंपन और मेरेपन का सूक्ष्म त्याग करते चलना चाहिए। इससे जीवन में बहुत दिव्यता आएगी, एक गहन शांति का अनुभव रहेगा जीवन में। उसको लगेगा हमारी स्पिरिचुअल पावर दिनों दिन बढ़ती जाती है। अन्यथा क्या होता है, क्रोध और ये अहंकार, जो भाई बहने हैं, भाई भाई कह दें, दोनों बड़े भाई, तो इनके कारण मनुष्य की वो शक्तियाँ नष्ट बहुत होती हैं
जी।
तो मैं और मेरे का त्याग करने से क्रोध भी शांत होगा और निरहंकारिता बढ़ती जाएगी, चित शीतल होता जाएगा। ये बहुत सुंदर बात होगी धारणा की, जो मनुष्य को आगे बढ़ाएगी।
प्रीति जी, एक बात, कई बार ऐसा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है जो मैं देख पाता हूँ या समझ पाता हूँ, कि ज्ञान इतना अथाह है, करना बहुत कुछ है, ज्ञान भी बहुत अथाह है, तो व्यक्ति कई बार सोचता है कि कहाँ से शुरुआत करूँ, ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ। जैसे आपने तीन धारणाएं कही, धारणाएं और भी बहुत सारी हो सकती हैं, तो व्यक्ति इसी ऊहापोह में रह जाता है कि शुरुआत कहाँ से हो, कौन सी चीज से करूं और ये करूं या ये करूं, यहाँ क्या सजेस्ट?
हाँ, मैंने इसलिए ये बात शुरुआत की कि यहाँ से शुरू करें। जीवन मुझे सरल बनाना है, संतुष्ट रहना है, निरहंकारी बनना है। रही बात सुभावनाओं की, वो हमें ध्यान देते रहना है धीरे धीरे, भाई अब हम एक अच्छे मार्ग पे हैं, हमें किसी के लिए अपने मन में बुरी भावना नहीं रखनी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, इसमें देर भी नहीं लगती, एक हम अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना ले। रही बात साक्षी भाव की, समर्पण भाव की, ये बात गुह्य है और धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में आती है। ये जो विश्व ड्रामा का ज्ञान है, इसको हम धीरे धीरे समझने लगते हैं और धीरे धीरे ये स्थिति बनेगी। इसलिए इसमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, ध्यान देना चाहिए, जो हमने पहले चर्चा की, सवेरे उठकर योग अभ्यास करना, ईश्वरीय महावाक्य सुनना। हम महावाक्यों में रोज नई नई बातें भी आ जाती हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये जो हमने तीन बातें बताई, इनसे बहुत सारी धारणाएं जुड़ी रहेंगी। अब जैसे मान लो बाबा ने कह दिया अपना टाइम वेस्ट न करो, तो ये कोई नई बात नहीं और ऐसी भी नहीं जो नहीं की जा सकती। तो मनुष्य इस पे ध्यान दे के मुझे भाई टाइम सफल करना है, बस इतनी सी देर होती है कि नहीं, टाइम सफल करना इम्पोर्टेंट टाइम है, तो वो धारणा सहज आ जाती है।
जी जी, क्योंकि तो जी रोज यदि नई नई बातें सुनते हैं तो लगता है कि अब इसको करें या पहले मैं जो कर रहा हूँ वो करें, तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। आपने सहज कहा कि जोड़ दें। और आपने बात जो ब्रता जी कही कि सुबह उठ करके अच्छा योगाभ्यास करें लास्ट ऑफ फास्ट के लिए, तो कोमल जिसका मेल हम लोग लेके चल रहे हैं, इसने ये भी एक प्रश्न किया था कि मैं लाख कोशिश कर लूं लेकिन मैं सुबह उठ नहीं पाती हूं, अलार्म लगा के सोती हूं लेकिन अलार्म बंद करके फिर से सो जाती हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी कठिनाई वाली स्थिति है। और कई ऐसे मेल हमारे पास आते हैं रहता जी, जिन्हें सुबह उठा नहीं जाता, उठ भी गए तो आनंद नहीं लिया जाता।
इसमें क्या, जो यंग लोग हैं उनको तो बिल्कुल उठा नहीं जाएगा, क्योंकि उनको नींद ज्यादा चाहिए,
लेकिन जाना भी तो लास्ट ऑफ फास्ट,
सोना वो सोने में बहुत देर कर देते हैं, उन्हें रात को बहुत काम करना पड़ता है। और रही बात अलार्म की, अलार्म तो किसी को उठाता ही नहीं, प्राय लोगों के ये अनुभव है कि वो नींद में ही हाथ आगे बढ़ाते हैं और बटन पे दबाते हैं और फिर सो जाते हैं, तो अलार्म नहीं। हम एक बहुत अच्छी विधि बताया करते हैं कि ब्रेन भी हमारा एक बहुत बड़ी चीज है हमारे साथ, उसमें रात को भर दें, संकल्प दे दें पावरफुली, मुझे 4 बजे उठना है, मैं 4 बजे बहुत फ्रेश उठ जाऊंगी, मैं 4 बजे उठकर आनंद लूंगा योग का, ऐसे अच्छे 5 बार कम से कम ये संकल्प भर दें, तो ब्रेन का जो अलार्म है वो इतना सुंदर ढंग से उठाएगा कि थकान भी नहीं होगी और उठने को मन करेगा। ये संकल्प दे दें सबकॉन्शियस माइंड को, मैं 4 बजे उठकर योग अभ्यास का आनंद लूंगा, मैं 4 बजे उठकर परमात्म मिलन का सुख प्राप्त करूंगी, तो ये संकल्प सवेरे बहुत काम करेंगे। खाना भी थोड़ा हल्का खाना चाहिए रात को, जल्दी भी खा लेना चाहिए, टीवी आदि देखते हुए नहीं सोना चाहिए, और जिनको सवेरे का आनंद लेना है कम से कम 15 मिनट तो अच्छा योग अभ्यास सोने से पहले करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल। और भ्राता जी, जैसे ये बात चल रही है कि हमारी सभी सब्जेक्ट में हमें पूरे फुल मार्क्स लेने हैं या हमें बिल्कुल ही शीर्ष पे पहुंचना है, क्या आपको लगता है कि कुछ चार्ट ऐसा बना लेना चाहिए जिसके द्वारा हमारा ध्यान सतत बना रहे और रात्रि में भी सोने से पहले हम एक बार देख लें कि आज मेरी उन्नति कितनी रही, ये कितना मददगार?
देखिए, बहुत ही मददगार है चार्ट। लिखने से मनुष्य की बहुत उन्नति होती है। और एक लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन एक 3 पॉइंट चार्ट या 5 पॉइंट चार्ट। 5 पॉइंट चार्ट में देखिए ऐसा कर सकते हैं, दो ये सुंदर धारणा रख लें कोई भी, जो जिसको पसंद आए, जो जिसको आवश्यक लगे। इसलिए हर एक को अपना अपना चार्ट अपना व्यक्तिगत बनाना चाहिए। एक योग का पॉइंट रख लें, कितना योग सारा दिन किया या अमृत वेले कैसा योग किया। एक स्वमान की बात उसमें रख लें बहुत अच्छी तरह से कि स्वमान का हमने अभ्यास किया। और कोई एक अच्छा योग का अभ्यास भी रख सकते हैं कि आज सारा दिन हम ये योग का अभ्यास करेंगे। भिन्न भिन्न अभ्यासों की चर्चा हम पहले भी कराए हैं, तो उसको सारा दिन करते रहने से रात को थोड़े से में लिख दें भाई आज परसेंटेज दे दें, मार्क्स दे दें अपने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड दे दें, जो भी जिसको ईजी लगे और समझ में आए। तो इसको लिखने से अटेंशन बहुत अच्छा रहेगा और नो डाउट के बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी।
बिल्कुल। प्रति क्या लगता है कि रात में ही एक बार फाइनल चार्ट लिखना चाहिए या दिन में भी बीच बीच में देख लेना चाहिए कि जैसा मैंने आज अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे ये कार्य करना है या इन धारणाओं पे ध्यान देना है या इतना योग करना है, बीच में भी यदि अटेंशन दे दिया जाए तो कैसा रहे?
श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो इस पे डिपेंड करेगा कि हम रात को चेकिंग करने की बजाय एक ऐसा चार्ट बनाए कि आज मुझे ये करना है। रात को तो हम ये लिखेंगे कितना कितना किया, जैसे हम फिक्स कर ले, मान लो मुझे ये अभ्यास करना, मैं आत्मा भ्रकुटि सिंहासन पर हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो मुझे हर घंटे में 5 बार कर लेना है, 3 बार कर लेना है। तो बीच में भूल भी जाएगा, फिर ज्यादा कर लें, रात को देख लें भाई कितना कितना हुआ, अगले दिन के लिए और अपने को जरा केयरफुल कर दें, अटेंशन में ले आए कि हमें इसको करना ही है। तो इस तरह ये चार्ट लिखना उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत सुंदर प्रकाश मिला है। यहाँ से तो सभी शुरुआत करें ही, और इसके बाद तो खैर विषय बहुत ही गहन है, इस पे हम और प्रकाश आपसे लेते रहेंगे, चाहे वो ज्ञान का विषय है, योग का विषय है, धारणा का विषय है, सेवा का विषय है। सचमुच बहुत गहन है और एक एक विषय पे मुझे लगता है कि बड़े बड़े शास्त्र लिखे जा सकते हैं। आपसे हम आगे भी प्रकाश लेते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच बहुत ही सुंदर चर्चा रही है और चर्चा यहाँ संपन्न नहीं हुई है कि हम कैसे फास्ट जाएं और फर्स्ट आएं। ये लगन होना, ये रुचि रखना, एक लक्ष्य रखना सचमुच बहुत ही खूबसूरत सी बात है हमारे लिए कि हम ऐसा चाहते हैं कि जिस पद पे हम आ गए हैं अब उस पद के हम शीर्ष पे पहुंचें। और ऐसा लक्ष्य हर एक विद्यार्थी को रखना ही चाहिए, हर एक साधक को रखना चाहिए कि मैं आध्यात्म के शिखर पर पहुंचूं। लेकिन सचमुच चर्चा बहुत गहन है, जैसे चारों सब्जेक्ट की बात भ्राता जी हमेशा कहते हैं, तो मुझे लगता है कि विस्तार से हम लोग इस विषय को आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन आज जितनी चर्चा हुई है कम से कम वहां से हम शुरुआत जरूर करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा भोजन हमारे सामने परोस दिया जाता है तो लगता है कि मैं ये खाऊं या ये खाऊं या ये खाऊं, लेकिन आज जो भोजन परोसा गया है, जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण धारणाएं भ्राता जी ने बताई हैं और साथ ही बहुत सारी चीजें और भी, दिनचर्या कैसी हो, अमृत वेला या मुरली क्लास की बात हुई है, हम वहां से शुरू करें, अपना प्रैक्टिकल प्लान बनाएं कि मुझे क्या क्या करना है और ये करने के बाद जरूर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो जैसे जैसे आप इन चीजों को करते जाएंगे आपका उमंग उत्साह बढ़ेगा और खुद ही आपको अंतः प्रेरणा मिलती जाएगी कि मुझे ये चीजें और ऐड करते जाना है। और जैसे भ्राता जी हमेशा कहते हैं कि स्वयं के द्वारा बनाया हुआ जो चार्ट होता है, प्लान होता है, वो बहुत ज्यादा कारगर होता है क्योंकि वो मैंने खुद बनाई हुई होती है। तो इसलिए खुद अपना चार्ट बनाएंगे और खुद ही आगे बढ़ेंगे इस विषय को आगे भी, क्योंकि भ्राता जी हमारे साथ लगातार रहते हैं, प्रकाश भ्राता जी से लेते रहेंगे कि कैसे हम शिखर पर पहुंचे, शीर्ष पे पहुंचे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को कि आप जहां पे भी हैं वहां शिखर पर पहुंचे, अपना भी, परिवार का भी, देश का नाम रोशन करें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।